महाराज रत्नाकर का स्वप्न सत्य हुआ। महारानी विजया गर्भवती हुई। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया, त्यों त्यों महारानी के श्रीमुख की कांति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। महाराज रत्नाकर की प्रसन्नता का पारावार ना था। महाराज की प्रसन्नता में संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था तथा चहुं ओर आनंद व मंगल का वातावरण तिरोहित हो उठा था। महाराज रत्नाकर ने प्रधानमंत्री एवं कोषाध्यक्ष को कड़े निर्देश दे रखे थे कि संपूर्ण राज्य में कोई दीन दुखी नहीं रहना चाहिए, जिसे जो भी आवश्यकता हो दिया जाए। वैसे भी संपूर्ण राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु अब तो महाराज रत्नाकर ने वस्तुतः कोष के कपाट जनता के लिए खोल दिए थे। जो भी याचक द्वार पर आता, उसे मन चाही वस्तु अवश्य ही मिलती। समय का अबाध चक्र चलता रहा। महारानी विजया के गर्भ के 10 मास पूरे होने को आए। इधर संपूर्ण रत्नाकर साम्राज्य में आनंदमय वातावरण प्रस्फुटित हो गया। सरिताएं कल कल नाद करती हुई जनमानस को शीतलता प्रदान करते हुए बहने लगी। रंग बिरंगे पुष्प व लताएं अपनी भीनी भीनी सुगंध की छटा बिखेरने लगे। पक्षी आने वाले शुभ समय का संकेत पाकर अपने कलरव से कानों में रस घोलने लगे। ऐसे ही सुंदर वेला के ब्रह्म मुहूर्त में, जब लग्न का स्वामी अपनी ही राशि में विराजमान था, सभी शुभ ग्रह अनुकूल एवं मंगलकारी फल प्रदान करने वाले थे, तो सुधर्मा महारानी विजया के गर्भ से त्रिशक्ति अवतार प्रकट हुआ। भगवती वैष्णवी देवी ने जनमानस के कल्याण हेतु जन्म लिया। जिस दिन से भवानी वैष्णवी का जन्म हुआ, महाराज रत्नाकर के साम्राज्य में धन धान्य सुख वैभव व आनंद उत्तरोत्तर बढ़ते ही चले गए। संपूर्ण प्रजा अपने मन में असीम शांति का अनुभव करने लगी। महाराज रत्नाकर और महारानी विजया जैसा भाग्य किसका होगा, जिन्हें त्रिशक्ति अवतार माता वैष्णवी देवी को गोदी में खिलाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। आनंदमय वातावरण लाड प्यार से पोषित होते हुए महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली का सम्मिलित रूप देवी वैष्णवी 9 वर्ष की हो गई। उन्हीं दिनों महाराज रत्नाकर ने आद्याशक्ति यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भवानी वैष्णवी ने सक्रिय भाग लिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन समय की प्रथा के अनुसार सैकड़ों यज्ञ पशु बलि करने के लिए एकत्रित किए गए थे। उचित समय पर जब बलि कार्य प्रारंभ होने ही वाला था, तो वैष्णव धर्म की आदि स्तंभ जगत तारिणी देवी वैष्णवी बोल उठी।
आचार्य,
क्या बात है वैष्णवी?
पिताश्री, मेरी कुछ शंकाएं हैं, जिनका समाधान यज्ञ के प्रमुख आचार्य ही कर सकते हैं।
किंतु क्या ये यज्ञ कार्य में व्यवधान ना होगा?
और जो मैं करने जा रही हूँ, यदि वो नहीं हुआ तो संभवतः हम सबको महापाप का भागी बनना होगा।
जन कल्याण हेतु मैं हर कार्य के लिए उपस्थित हूँ राजकुमारी, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप?
सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन है कि मुझे आप राजकुमारी न मानकर एक साधारण प्रजाजन ही माने।
जैसी आपकी इच्छा।
अतीव धन्यवाद धर्माचार्य जी। मेरा प्रश्न है कि इतने निरीह पशु क्यों एकत्रित किए गए हैं?
यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय बलिदान करने के लिए।
मेरी सविनय प्रार्थना है कि क्या आप मुझे कोई ऐसा प्राचीन ग्रंथ दिखा सकते हैं, जिसमें ये लिखा हो कि निरीह मूक पशुओं का बलिदान दिया जाना चाहिए?
प्राचीन ग्रंथों में बलिदान देना तो अवश्य लिखा हुआ है, किंतु किसकी बलि हो ये स्पष्ट नहीं है।
तो फिर पशुओं की बलि कहाँ तक धर्म सम्मत है?
वैष्णवी, ये एक प्रथा है, अति प्राचीन प्रथा।
धर्माचार्य जी एवं उपस्थित साधु मंडल, तनिक ध्यान से देखिए इन निरीह पशुओं को, इनकी आंखों में समाये भय को, आंखों से बहते हुए नीर को।
तुम कहना क्या चाहती हो वैष्णवी?
आचार्य जी, पल पल मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए ये भयभीत यज्ञ पशु क्या आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, कदापि नहीं। मृत्यु के भय से उठता हुआ इनके मनों का क्रंदन किसी अनिष्ट को तो जन्म दे सकता है, सुख शांति अथवा मंगल को कदापि नहीं। क्या अधिकार है आपको इन पशुओं के प्राण लेने का? क्या आप इन्हें फिर से प्राण दे सकते हैं?
नहीं वैष्णवी।
तो फिर इनकी बलि क्यों?
यज्ञ की सफलता के लिए।
आचार्य जी, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मा, शरीर एवं वातावरण की शुद्धता। क्या इन पशुओं का मौन चीत्कार आपके यज्ञ वातावरण को शुद्ध करेगा? क्या बलि पश्चात इनकी भटकती हुई आत्माएं आपके सुख का कारण बनेंगी? इनके बिलखते हुए पिछड़े परिवारजन आपको आत्मिक उत्थान का आशीर्वाद देंगे?
क्षमा, क्षमा देवी वैष्णवी, क्षमा, हमें क्षमा करो। ओ, आज तक धर्म के नाम पर मैं कितने बड़े पापाचार को प्रोत्साहन देता रहा, कैसे प्रतिकार कर पाऊंगा मैं इस महापाप का?
यदि अपनी भूल पर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए और प्रायश्चित स्वरूप सत्य वस्तु का प्रचार किया जाए तो मानव कल्याण निश्चित है।
मैं आज से वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा।
वैष्णव धर्म का आधार है सहज स्नेह। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता अथवा समझने पर भी उसे दूर करने का यत्न नहीं करता, वो और तो चाहे जो कुछ हो, वैष्णव नहीं हो सकता।
वैष्णवी,
हमारी भी एक शंका का समाधान करो।
पिताश्री, आज्ञा कीजिए।
अनादि काल से यज्ञ में बलि का विधान चला रहा है, बहुत से विधि ग्रंथों में भी बलि का वर्णन आता है, तो क्या सारे ग्रंथ झूठे हैं?
कदापि नहीं। सनातन ग्रंथों का एक एक अक्षर सत्य है। यज्ञ में बलि अवश्य दी जानी चाहिए, किंतु पशु की नहीं, बल्कि अपनी पशुता रूपी हिंसा की, अज्ञान, अविद्या एवं बुरे व्यसनों की।
ओह, यह तो तिल की ओट में हमसे आज तक पहाड़ ओझल रहा, इस भूल का प्रायश्चित कैसे हो पाएगा?
पिताश्री, सबसे पहले तो आप इस कुप्रथा को बंद करवाइए।
ठीक है महामंत्री जी।
आज्ञा महाराज।
आज से हमारे साम्राज्य में किसी भी यज्ञ अथवा पूजन में पशु बलि घोर अपराध होगी, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा।
क्षमा कीजिए पिताश्री, पशु हत्या केवल यज्ञों में ही क्यों बंद की जाए, सारे साम्राज्य में क्यों नहीं?
वैष्णवी, तुम भली प्रकार जानती हो कि बहुत से प्रजाजन मांसाहारी हैं। हम स्वयं भी मांसाहारी हैं, आहार को कैसे निषिद्ध किया जा सकता है?
पिताश्री, जिसे ईश्वर ने शाकाहारी बनाया है, क्या उसके लिए मांस खाना उचित है? मेरे विचार से तो ये पाप है।
ईश्वर ने किस प्रकार मानव को शाकाहारी बनाया है?
पिताश्री, आप ध्यान से चराचर जीवों के प्रति सोचिए। जिन जीवों के पास होंठ है और वो होंठों से ही पानी पीते हैं, वो शाकाहारी है। परंतु जो होंठ रहते हुए भी जीव लपलपा कर पानी पीते हैं, ईश्वर ने उन्हें कार्य विशेष वर्ष मांसाहारी बनाया है। मानव होठों से पानी पीता है, अतः ईश्वर इच्छा उसके शाकाहारी होने का प्रमाण है।
ओह, कितना गहन किंतु सटीक विश्लेषण है। आज से हमने मांस ना खाने का प्रण किया। हम सतत प्रयत्न करेंगे कि तुम्हारे द्वारा बताए हुए सत्य से हम प्रजा को अवगत करवाकर मांस खाने से रोक सके।
हमें महामना वैष्णवी देवी का आदेश स्वीकार है। हम प्रण करते हैं कि मांस नहीं खाएंगे।
देवी वैष्णवी की
जय।
देवी वैष्णवी की
जय।
देवी वैष्णवी की
जय।
इस प्रकार दया, सहज स्नेह तथा परोपकार के स्वर्णिम सिद्धांतों का विश्वेश्वरी वैष्णवी ने प्रचार एवं प्रसार किया। महाराज रत्नाकर वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक बने। संपूर्ण साम्राज्य में वैष्णव धर्म आत्मिक रूप से अपना लिया गया। समय के बहते प्रवाह के साथ साथ पूरी प्रजा में आनंद, मंगल व भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। चारों ओर भक्ति रस की अमृतमयी धारा सत्संग एवं कीर्तन रूप में मुखर हो उठी।
धर्म यही है, उत्तम कर्म यही है।
जगत तारिणी आदि कल्याणी भगवती वैष्णवी ने इस प्रकार वैष्णव धर्म की पुनर्स्थापना की। उनका इतना प्रभाव था कि प्रजाजन सदैव उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते थे। महामना के मुख से निकले अमृत सने वचनों को श्रवण करने के लिए भक्त जनों का तांता लगा रहता था। सर्वज्ञ ने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रसार हेतु एक दृढ़ संकल्प किया।
पिताश्री,
आओ आओ वैष्णवी, कहो क्या बात है?
आपकी आज्ञा व आशीर्वाद चाहिए।
मेरी पगली बेटी, अरे हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी किसी भी इच्छा के मार्ग में हम कभी भी बाधा नहीं बने। फिर आज्ञा काहे के लिए?
तपस्या के लिए पिताश्री।
इतना बड़ा महल, इतना बड़ा उद्यान, जहाँ जी चाहे वहाँ तपस्या करो।
नहीं पिताश्री, मेरा आपका साथ बस इतना ही था। अब मुझे महल एवं नगर का परित्याग करना ही होगा।
नहीं 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 वैष्णवी, ऐसा मत कहो। मेरी लाडली, तू ही तो एकमात्र हमारी आंखों का तारा है। गृह त्याग की आज्ञा मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता।
पिताश्री, आप अपने प्रण से पीछे हट रहे हैं।
कौन सा प्रण? कैसा वचन? मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया।
याद कीजिए पिताश्री, मेरे जन्म से पूर्व का स्वप्न, जिसमें आपको भवानी ने कुछ आदेश दिया था।
रत्नाकर, तुम और तुम्हारी पत्नी धन्य है। तुम्हारे घर तीनों महाशक्तियों का सम्मिलित रूप अर्थात त्रिशक्ति अवतार कन्या रूप में जन्म लेगा। किंतु सावधान, कभी उसकी इच्छा में बाधक मत बनना।
नहीं 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 नहीं, हम कभी उसकी इच्छा नहीं ठुकराएंगे। ओह, यह कैसा बंधन!
पिताश्री, नियति का यही आदेश है।
हम तो अपने हृदय पर पत्थर रख लेंगे, किंतु ममता की चिरप्यासी तुम्हारी माँ को कैसे समझा पाएंगे?
आप वो कार्य भी सुचारू रूप से कर लेंगे। पिताश्री, मैं कल सूर्योदय से पूर्व ही प्रस्थान कर दूंगी।
जैसी तुम्हारी इच्छा।
रोती बिलखती माता प्रजा तथा पिता को छोड़कर भवानी वैष्णवी तपस्या हेतु चल पड़ी। महाराज रत्नाकर की राज्य सीमा लांघकर समुद्र तट के निकट एक उचित वनस्थली पर देवी वैष्णवी घोर साधना में लीन हो गई। समय व्यतीत होता रहा, कई वर्ष व्यतीत हो गए। घोर समाधि में लीन भगवती वैष्णवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई। तपस्या के बल से उस वनस्थली की शोभा अवर्चनीय हो गई थी। स्वयं भवानी वैष्णवी की मुख प्रभा से दसों दिशाएं आलोकित होने लगी थी। उनकी काया अति कृश थी, यहां तक कि उनके शरीर पर मिट्टी और जल कणों ने मिलकर एक टीला सा बना दिया था। उनकी इस शारीरिक अवस्था को देखकर देवता चिंतातुर हो उठे, किंतु महामना का मंत्र जाप चलता ही रहा। अंततः एक दिन
शक्ति अवतार भगवती वैष्णवी को ब्रह्मा का प्रणाम।
आदि प्रजापति चतुरानंद वेद वक्ता ब्रह्मा जी, आप?
हाँ देवीश्वरी, आपकी अपने शरीर के प्रति उदासीनता ने मुझे आने पर विवश कर दिया।
क्या? क्या महत्व है इस नश्वर शरीर का?
बहुत बड़ा महत्व है कल्याणी। आपको अभी बहुत कुछ करना है। आने वाला समय अति कठिन है। कलयुग में तो दुखी मानवता को आपका ही सहारा होगा।
परंतु प्रभु, मेरा अंतर्मन तो साधना में ही लीन रहना चाहता है।
तो ठीक है, आज से आप स्थिर यौवना होंगी। आप सदा सर्वदा ऐसी ही रहेंगी।
ये आपकी अतीव अनुकंपा है प्रभु।
देवी वैष्णवी, एक कृपा और कीजिए।
आज्ञा।
यह सर्व पदार्थ देने वाला कमंडल स्वीकार कीजिए। आप जिस पदार्थ की भी इच्छा करेंगी, आपको इससे प्राप्त हो जाएगा।
किंतु मैं क्या करूंगी इसका?
समय आने पर इसका उपयोग भी स्पष्ट हो जाएगा।
जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
तो अब आज्ञा। जय भवानी वैष्णवी।
थोड़े ही समय पश्चात उसी सागर तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अनुज वीरवर लक्ष्मण तथा सुग्रीव अंगद बजरंग बली एवं महती बानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से पहुंचे। विशाल सागर कैसे पार किया जाए, इसी समस्या पर विचार करते हुए रघुकुल चंद्र श्री राम एक दिन अनचाहे ही उस वनस्थली तक पहुंच गए जहां देवी वैष्णवी तपस्यारत थी। उस स्थल की पावनता ने श्री राम के हृदय में एक अलौकिक शांति का संचार किया। बढ़ते बढ़ते वो भवानी वैष्णवी के सन्मुख पहुंच गए। उसी क्षण दैवेच्छावश देवी वैष्णवी के नेत्र खुल गए। अपने सामने एक दिव्य जटाजूटधारी सुकुमार को देखकर ना जाने क्यों उनकी हृदय तंत्री झनकृत हो उठी। उधर इस निर्जन प्रदेश में अनिद्य तपस्विनी सुंदरी को देखकर श्री राम भी अवाक रह गए।